ओम शांति। बहुत सुंदर गीत सुन रहे थे हम, बड़ा प्यारा लगे साथ तुम्हारा बाबा। तो बाबा के इस आंगन में बहुत समय के बाद हिंदी क्लास आज हो रही है, क्योंकि विदेशी सीजन चल रही है तो डबल विदेशी जो इंग्लिश जानते हैं उनकी संख्या ज्यादा होती है तो इंग्लिश में चलती है क्लास, लेकिन इस ग्रुप में हिंदी जानने वाले भी बहुत हैं, इसलिए हिंदी में ये क्लास बहुत दिन के बाद आज हो रही है। तो आज की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और क्लास कराने के लिए जो हमारे बीच में हमारे राजयोगी आदरणीय छोटेलाल भाई जी पधारे, उनका भी हम करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। आप पिछले 37 वर्षों से इस ईश्वरीय ज्ञान में हैं और पिछले 31 वर्षों से मधुबन पावन भूमि में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विशेष करके सिक्योरिटी की सेवाएं और साथ साथ यहाँ पर जो रोज रात्रि क्लास होती है उसका प्रोग्राम बनाने की सेवा आप संभालते हैं। इसके अतिरिक्त पूरे भारत भर में समय समय पर आपको भट्टियां कराने के लिए निमंत्रण मिलते हैं और आप वहां जाते हैं और ब्राह्मणों को लाभ भी देकर आते हैं। और इसके अलावा आपके लौकिक घर में गीता पाठशाला चलती है, आपकी लौकिक 3 बहनें भी ज्ञान में चलती है और उनकी कुल 6 बेटियां बाबा के घर में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही है। तो ऐसे ईश्वर के अनमोल रतन हमारे सामने अभी अपने अनुभव युक्त बोल शेयर करेंगे, आदरणीय राजयोगी छोटेलाल भाई जी।
ओम शांति। हम सभी को प्यारे बाप दादा ने अपने समान बनाने के लिए, तपस्वी मूरत बनाने के लिए इस वर्ष को तपस्या वर्ष घोषित किया है। तो हम सभी की तपस्या में जो भी कुछ कमी कमजोरी रही हुई हो उसे समाप्त करके एक पावरफुल तपस्या बन जाए, तभी हम अपने विकर्मों का विनाश कर सकेंगे, संस्कारों का परिवर्तन कर सकेंगे और जो बाबा की आशा है बाप समान बनने की उसे पूरा कर सकेंगे। तो हम सभी को अपनी तपस्या को और पावरफुल बनाना होगा, क्योंकि हमारी तपस्या के द्वारा बाबा ने अनेक कार्य कराने हैं। क्या क्या होता है तपस्या से? अनेक आत्माओं को बाबा टचिंग कराता है, उनकी मनसा सेवा कराता है, विकर्मों का विनाश होता है, संस्कारों का परिवर्तन होता है, आत्मा पवित्र बनती है और वातावरण वायुमंडल शुद्ध बनता है। और जहां पर तपस्या पावरफुल है तो अनेक आत्माओं की मनोवृत्तियों को भी बदला जा सकता है। इस तरह से जब हम अपनी तपस्या को पावरफुल बनाएंगे, अर्थात स्वयं में हर बात में परिवर्तन कर चलेंगे, तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होना है। इसलिए हम सभी विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त आत्माएं हैं। हमारी तपस्या पावरफुल होगी तो उसके द्वारा अनेक बड़े बड़े कार्य बाबा ने हमारे द्वारा करवाने हैं। इसलिए अपनी तपस्या को पावरफुल बनाना और एक उसमें संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करना बहुत बहुत जरूरी है। तो वैसे तो आप सभी करते ही अपने अपने रीति से, लेकिन मैं कुछ एक बातें आप सभी को अपने अनुभव के आधार से बताऊंगा और आप भी उनका अपने जीवन में प्रयोग कर चलें तो निश्चित रूप से जिसने जो भी लक्ष्य रखा है या बाबा ने हमको जो ये लक्ष्य दिया है पावरफुल तपस्या करने का, अर्थात हमारी तपस्या 2-4 घंटे की नहीं लेकिन निरंतर चलती रहे, उसको कहेंगे तपस्वी जीवन, योगी जीवन। तो ऐसी तपस्या बनाने के लिए हमारी तपस्या का, योग का आधार बनते हैं हमारे मन के पावरफुल शक्तिशाली विचार संकल्प। हम अपनी संकल्प शक्ति को यदि पावरफुल बना के चले, क्योंकि सबसे पहले मन में किसी भी कार्य के लिए संकल्प आता है, मुझे ये कार्य करना है, वहां जाना है नहीं जाना है, क्या करना है कैसे करना है, हर बात के लिए संकल्प उठता है ना। यदि वो आपका संकल्प ही कमजोर होगा, साधारण होगा या नेगेटिव होगा, पता नहीं मैं ये कार्य करूंगी तो सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, ऐसा करने से ऐसा होगा या नहीं होगा, तो फिर उसका रिजल्ट भी वैसा ही होगा। तो हमारे एक एक संकल्प में यदि वो पॉजिटिव और पावरफुल है तो इतनी बड़ी शक्ति है कि जिसके द्वारा एक असंभव कार्य को संभव किया जा सकता है। क्योंकि एक मिनट का साइलेंस करेंगे, रिकॉर्ड बज रहा है, तो हम अपनी तपस्या को पावरफुल बनाने के लिए अपनी संकल्प शक्ति को पॉजिटिव पावरफुल बना के चलना बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि जो भी हम संकल्प कर रहे हैं उस सभी का हमारे मन और शरीर पर वैसा ही प्रभाव पड़ रहा है जैसा हम संकल्प कर रहे हैं। तो बाबा ने भी कहा है कि जैसा तुम सोचोगे वैसा बनते जाओगे। तो हम ये अपने आप से पूछें, क्या मैं जो बनना करना चाहती हूँ चाहता हूँ वही संकल्प वही विचार मेरे मन के अंदर उठ चलते हैं, या जो कई बार नहीं चाहते वो भी सोच लेते हैं। तो आपको पता चलेगा यदि गहराई से चेक कर देखें अपने अंदर सारे दिन की दिनचर्या में, तो अपने मन के विचारों में ज्यादातर व्यर्थ नेगेटिव या साधारण विचारों की मात्रा अधिक होती है और उसकी भेंट में पॉजिटिव पावरफुल विचारों की मात्रा कम होती है। तो उसको हमें अधिक बढ़ाना है, संख्या को, पॉजिटिव पावरफुल विचारों की मात्रा को। तो कैसे एक संकल्प हमारे मन और शरीर पर असर डालता है। एक भाई का फोन आया हमारे पास, कहने लगे एक भाई जी मैं 25 साल से ज्ञान में चलता हूं और हमारे को हमारे ही बच्चों ने घर से निकाल दिया है, 80 साल की उम्र है, कहां जाऊं क्या करूं, बड़ी समस्या आ गई है। बच्चे भी ज्ञान में चलने वाले और माँ बाप भी ज्ञान में चलने वाले, ये तो पहली बार सुना ऐसा अनुभव हमने भी। तो मैं भी सोचने लगा भाई क्या जवाब दिया जाए इसको। तो एक मिनट बाबा से कनेक्शन जोड़ा, बाबा को याद कर बताया, बाबा ये आत्मा ऐसे ऐसे पूछ रही है क्या जवाब दिया जाए। बाबा की तरफ से टचिंग मिली, बच्चे इनसे पूछो कि आप लोगों ने कहीं कुछ गलत तो नहीं सोचा था। तो पूछा भाई याद करो आप लोगों ने कहीं कुछ गलत तो नहीं सोचा था। तो एक मिनट सोच के वो भी कहता है कि हाँ हम सोचते थे कहीं बच्चे घर से नहीं निकाल दें तो कुछ पैसा जमा करके रख लो, तो जो सोचा वही हो गया उनके साथ। तो ये बड़ी सूक्ष्म प्रक्रिया है, हम इस पर बहुत ध्यान देकर चलें। जो हम बनना करना चाहते हम वही सोचें, जो नहीं चाहते हम ना सोचें, नहीं तो वो हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे हम अपनी संपूर्ण स्थिति के समीप पहुंच रहे हैं ना, वैसे वैसे हमारे एक एक संकल्प में वो शक्ति पावर आती जा रही है, जो हम सोचते हैं वो हो जाता है। इसलिए ध्यान देकर चलने की बात है कि जो हम बनना करना चाहें हम वही सोचें, जो नहीं चाहते वो संकल्प ना करें। और इसके साथ साथ जो भी हमने बनना है उस संकल्प में एक दृढ़ता शक्तिशाली पॉजिटिव पावरफुल होना चाहिए कि मुझे ऐसा बन के दिखाना है, मुझे ऐसा करके दिखाना है, तो निश्चित रूप से आप वैसे बनते चले जाएंगे। वो शक्ति है, लेकिन शर्त यही है कि उस संकल्प को जो भी हम बनना करना चाहते हैं उसको अमृत वेले विशेष आंख खुलते ही अपने अंतर मन में भर दो कि मुझे बाप समान या निरंतर योगी या फरिश्ता बनना है, मुझे अपनी तपस्या को इतने घंटे की बनाना है। जिसने जो भी लक्ष्य रखा हो कम से कम 9 बार उठते ही अमृत वेले संकल्प कर लो और दिन में भी 2-3 बार उसको रिवाइज करो, तो निश्चित रूप से आप वैसे बनते जाएंगे। तो एक पॉजिटिव पावरफुल संकल्प यदि है तो उसमें इतनी बड़ी शक्ति है वैसा बनने करने की। हमारे एक एक संकल्प के अंदर क्रिएटिव एनर्जी है, रचनात्मक शक्ति है वैसा बनने करने की जैसा हम संकल्प कर रहे हैं। तो यदि हम उसको अपने अंदर बनाए रखते हैं अपने मन के विचारों में तो निश्चित रूप से वैसे बनते जाएंगे। एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर क्लास करा रहे थे, उन्होंने अपनी क्लास में यह बात बताई मुझे बहुत आगे बढ़ने में प्रेरणा मिली उस बात से। है थोड़ी सूक्ष्म गहराई की बात, लेकिन बड़ी प्रेरणादायक और आगे बढ़ने में बहुत मददगार सिद्ध हो सकती है यदि हम इसको ध्यान देकर चलें तो, कि जो संकल्प आपके मन में बार बार आता है कैसा है, कौन सा है, वो आप चेक करना अपने आप को, कि जो संकल्प मेरे मन में बार बार आता है, इससे सिद्ध होता है कि हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब हर एक अपने आप को चेक कर ले, क्या जो मैं बनना करना चाहती हूं वही विचार मेरे मन में ज्यादातर रहता है, या फिर लक्ष्य तो रख लिया अब आप समान निरंतर योगी बनने का, और संकल्प चल रहे हो दुनिया भी इधर उधर के, तेरी मेरी के, धंधे धोरी के, कैसे उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तो वैसे ही विचार निरंतर हमारे अंदर मन के अंदर बने रहे तो उस लक्ष्य में सफलता प्राप्त करते जाएंगे। तो कैसे एक पावरफुल संकल्प, दृढ़ संकल्प हमारे मन और शरीर पर असर डालता है, सुनिए एक प्रैक्टिकल का अनुभव। एक भाई थे, उनको कैंसर हो गया था और डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया था कि आप केवल 4 महीने के मेहमान हो, इससे ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते, जो कुछ करना है कर लीजिए। लेकिन उस भाई ने संकल्प को अपने अंतर मन में ही नहीं जाने दिया। डॉक्टर की बात सुनकर उन्होंने अपने मन में एक पॉजिटिव पावरफुल संकल्प किया कि नहीं, मुझे तो जिंदा रहना है, मुझे भगवान के यज्ञ की सेवा करनी है, मुझे इस कैंसर की बीमारी से कंप्लीट मुक्त होना। ये पॉजिटिव पावरफुल, डॉक्टर की बात के एकदम अपोजिट और पॉजिटिव पावरफुल संकल्प वो रोजाना करते रहे। तो ये नियम है कि हम सभी का शरीर बॉडी जिन सेलों से बनी है, वो हर एक व्यक्ति के शरीर के सेल हर 4 महीने के अंदर कंप्लीट चेंज हो जाते हैं, नए सेल्स बनते रहते हैं, पुराने खत्म होते जाते हैं। ये प्रक्रिया हर एक के शरीर में ऑटोमेटिक चलती रहती है। तो नए सेल्स का निर्माण शरीर में किस आधार से होता है, जैसा हम संकल्प कर रहे हैं वैसे सेल्स बनते जाते हैं। तो उसने जब ये संकल्प किया कि मुझे जिंदा रहना है, भगवान के की सेवा करनी है, इस कैंसर की बीमारी से कंप्लीट मुक्त होना है, तो इन पॉजिटिव पावरफुल विचारों ने उसके शरीर में वैसे ही पॉजिटिव पावरफुल सेल्स का निर्माण करते चले गए, और धीरे धीरे जो नेगेटिव सेल थे कैंसर के वो खत्म होते चले गए उसके, क्योंकि पॉजिटिव सेल्स बनते गए तो नेगेटिव सेल्स खत्म होते गए। और इस बात को आज 9 साल हो गए, वो भाई आज तक जिंदा है, बाबा की अच्छी सेवा कर रहा है, कंप्लीट कैंसर मुक्त हो गया है। तो आप सोचिए एक पॉजिटिव पावरफुल संकल्प में कितनी बड़ी शक्ति है। यदि हम ये निश्चय कर लें कि मुझे बाप समान निरंतर योगी फरिश्ता बनना ही है, तो दुनिया की कोई शक्ति आपको वैसा बनने करने से रोक नहीं सकती। इसलिए कभी भी अपने मन में कमजोर अथवा नेगेटिव विचारों को नहीं आने दें, सदा ही पॉजिटिव पावरफुल विचारों का स्वरूप बन के चलें तो निश्चित रूप से वैसे बनते चले जाएंगे। एक मेरा स्वयं का भी अनुभव सुना देता हूं कि कैसे पॉजिटिव पावरफुल विचारों के आधार से एक असंभव कार्य को संभव किया जा सकता है। ये करीब 8 साल पहले की बात है, हम पूना नांदेड़ भट्टी कराने गए थे इंडिया में ही। तो जब ये प्रोग्राम बन रहा था तो नांदेड़ से 1 घंटा पहले आता है, परवनी बड़ा शहर है, तो वहां की बहन जी को पता चला तो उनका फोन आया हमारे पास कि भाई साहब सुनाए आप नांदेड़ भट्टी कराने आ रहे हो तो एक क्लास कराने के लिए हमारे यहाँ भी आओ। तो मैंने कहा ठीक है, आने का साधन क्या है, बोल रात के 10 बजे पूना से ट्रेन चलती है, उसमें आप आइए, और वैसे तो उस ट्रेन का टाइम है सुबह, राइट टाइम तो है सुबह 5 बजे पहुंचने का, लेकिन वो लोकल ट्रेन है, सब जगह रुकती आती है, तो हमारे यहाँ रोजाना ही सुबह 7:30-8 बजे तक लेट पहुंचती है, तब तक तो हमारा क्लास भी पूरा हो जाता है, तो आपको क्लास तो मिलेगा नहीं, फिर भी आप आइए। तो जब वो बहन जी ऐसे फोन पर मेरे को सुना रही थी, तो हमने उनकी बात सुनकर अपने मन में एक दृढ़ संकल्प किया कि नहीं बहन जी, जिस दिन हम आएंगे उस दिन ट्रेन राइट टाइम पहुंचेगी, हम क्लास कराएंगे। अभी देखो वो तो रोजाना के अनुभव से बतला रही है, लेकिन हमने अपने मन में एक पॉजिटिव पावरफुल संकल्प का प्रयोग किया। प्रोग्राम बन गया, माउंट आबू से पूना गए, पूना में 2 दिन की भट्टी थी, और तीसरे दिन रात को 10 बजे की ट्रेन से क्लास करा के, और एक दो सेंटरों पर क्लास कराते, रात के 10 बजे की ट्रेन से हम परवनी के लिए बैठे। लोकल ट्रेन थी, रिजर्वेशन नहीं था, टिकट लेकर बैठ गए। अब सारी रात बैठ के जाना, सुबह क्लास कराना है, थोड़ी थकावट हो जाती है, तो मैं बाबा को याद कर कह रहा बाबा अभी देखो सारी रात बैठ के जाना, सुबह क्लास कराना है, थोड़ी थकावट हो जाएगी, यदि हो सके तो कहीं सोने के लिए जगह मिल जाए तो अच्छा रहेगा। ऐसे में बाबा को याद कर कह रहा, और उसके 5 मिनट बाद एक ऊपर की सीट पर भाई बैठा था, वो मेरे को कहता है भाई साहब मैं अभी 5 मिनट में उतरने वाला हूं, आपको सोना हो तो आ जाओ। बस वो 5 मिनट में उतरा, ऊपर जाकर हम सो गए। तो जब सो रहे थे तभी बाबा को याद कर थैंक्स दिया, थैंक्स बाबा आपने सोने के लिए जगह दिलाई। लेकिन मैं अभी इस ट्रेन में बैठ गया और मुझे तो निमित्त बन के पार्टी बजाना है, सेवा कराने वाले तो आप हो, अभी इस ट्रेन को राइट टाइम पहुंचाना वो आपका काम है, क्योंकि ट्रेन राइट टाइम पहुंचेगी तभी हम अपने भाई बहनों की सेवा कर सकेंगे, अगर देरी से पहुंची तो कुछ पहुंचने का ज्यादा फायदा नहीं होगा। ऐसे मैंने बाबा को याद कर कहा और सो गए। सो गए तो ट्रेन में कैसी नींद आती है आप सब जानते हो, कभी नींद लगी कभी खुली। तो रात को एक दो बार जब आंखें खुली तो मैंने देखा ट्रेन सब जगह रुकती जा रही है, लेकिन जब चलती थी तो इतना फास्ट चलती जैसे कि हवा में उड़ रही हो। और वो ट्रेन जो रोजाना परवनी 7:30-8 बजे लेट पहुंचती थी, उस दिन वो ट्रेन सुबह 4:45 बजे परवनी जाकर खड़ी हो गई। तो हमने फोन किया जो भाई हमें लेने आने वाले थे, इनका भाई जी हम पहुंच गए, आप कब आ रहे हैं लेने के लिए। बोले हैं आप कैसे पहुंच गए, ये तो ट्रेन का टाइम ही नहीं है। मैंने कहा ट्रेन भी यहीं खड़ी है, हम भी यहीं खड़े हैं, अभी आप बताओ कब आ रहे हैं। अच्छा अच्छा मैं अभी आता हूं। तो 10 मिनट में गाड़ी लेकर आए और सेंटर पर हम गए और क्लास के पहले आराम से तैयार होकर 1.5 घंटा क्लास कराया। तो भले चाहे सारा संसार ये कह रहा हो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन यदि हम भगवान की श्रीमत पर हैं, उसको साथी बनाकर चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो आप सोचेंगे वही होगा। इसलिए कभी भी अपने मन में कमजोर अथवा नेगेटिव विचारों को नहीं आने दें, सदा ही पॉजिटिव पावरफुल विचारों का स्वरूप बन के चलें तो निश्चित रूप से वैसे बनते चले जाएंगे। दूसरी बात, अपनी तपस्या को बढ़ाने के लिए हम व्यर्थ से मुक्त बने, क्योंकि व्यर्थ के विचार हमारी तपस्या में बहुत बड़ा एक विघ्न है, जो ऐसी माया है जिसका पता ही नहीं चलता कईयों को, तो व्यर्थ भी चलता है, हैं? कितना सारा समय और शक्तियां हमारी वेस्ट चली जाती है, स्थिति साधारण हो जाती है। एक जैसे कि स्लो पॉइजन का काम करता है व्यर्थ के विचार, बड़े अच्छे लगते हैं चटपटे, ये वो फलाना वैसा है, ऐसा है, वो ऐसे करते हैं, ऐसा ही है, क्या क्यों कैसे, कितना सारा समय व्यतीत हो जाता है उसमें। और पूछो भाई क्या बात कर रहे थे, नहीं कुछ नहीं था ऐसे ही बात कर रहे थे। अब ऐसे ही कर रहे थे जिन बातों से हमारा कुछ कनेक्शन नहीं, मतलब नहीं, तो उसमें को क्या कहेंगे, व्यर्थ ही कहेंगे ना, उसमें समय और शक्तियां वेस्ट ही गई। तो इसलिए व्यर्थ बहुत बड़ी एक विघ्न है, तो व्यर्थ से मुक्त बनना बहुत बहुत जरूरी है। व्यर्थ क्यों चलता है, जब हम अपने आप को खाली छोड़ देते हैं, फ्री छोड़ देते हैं। तो जिनको पुरुषार्थ में आगे जाना है, तपस्या को आगे बढ़ाना है, वो कभी भी अपने आप को फ्री ना छोड़े, अपने मन का टाइम टेबल बनाए, कोई न कोई समान का अभ्यास, ज्ञान का मनन चिंतन, स्टडी, चेकिंग करना, चार्ट रखना, अटेंशन देना, अभ्यास करना। जिनको तपस्या में आगे जाना है वो ये मेहनत अपने आप से जरूर करें। और मेरा ये अनुभव है, जिन्होंने एक बार अपने पुरुषार्थ में ये मेहनत कर ली, इन इन बातों की जो भी बताई, तो ऐसी आत्मा निरंतर अपनी तपस्या में आगे बढ़ती रहेगी। तो व्यर्थ के संबंध में बाबा के महावाक्य हैं कि यदि तुम व्यर्थ से मुक्त होते जाओ तो वहां समर्थ संकल्पों की कमाल देखने को मिलेगी। इतनी बड़ी शक्ति है, यदि हम व्यर्थ से मुक्त होते जाएंगे तो जरूर हमारे विचार समर्थ शक्तिशाली बनेंगे, और उसमें वो शक्ति आ जाती है हम जो सोच रहे हैं वैसा बनने करने की। तो सुनिए एक ऐसा ही प्रैक्टिकल का अनुभव। देखो ज्ञान आप सभी के साथ पास है, लेकिन जब कोई किसी के भी सामने जीवन में परिस्थिति या समस्या आती है तो वहां फिर कईयों के पुरुषार्थ की गाड़ी खड़ी हो जाती है। अब क्या करें, कैसे करें, ये करें, वो करें, क्यों सब कुछ होते हुए क्यों कुछ काम नहीं आता उस समय कई बार, क्योंकि वहां ज्ञान भूल जाता है, विस्मृत हो जाता है। तो आवश्यकता है ज्ञान को इमर्ज रूप में रख के चलने की, ज्ञान स्वरूप बन के चलने की, ज्ञान को रिवाइज करके चलने की। तो आपको जिस किस समय क्या करना है वही संकल्प वही टचिंग बाबा से मिलेगी और वैसा करने में सफल हो सकेंगे। तो सुनिए एक ऐसा अनुभव कि कैसे जहां हम व्यर्थ के विचारों के वशीभूत होते हैं तो वहां हलचल होती है, और जहां समर्थ विचारों का स्वरूप बन के चलते हैं तो एक असंभव कार्य संभव हो जाता है। एक कोई भाई का फोन आया हमारे पास, कहने लगे भाई जी मुझे एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, मेरे मन में थोड़ा सा विचारों की हलचल है, हैं? क्या पता नहीं कैसा होगा इंटरव्यू, क्या प्रश्न वैसे पूछे जाएंगे, मैं इंटरव्यू में पास हो पाऊंगा या नहीं, तो मुझे क्या करना चाहिए, थोड़ा गाइड करेंगे आप? तो हमने उसे बताया कि आप इस निश्चय के साथ इंटरव्यू देने जाना कि मैंने जो पढ़ा है या याद किया है वही प्रश्न मेरे से पूछे जाएंगे इंटरव्यू में। दूसरा, इस निश्चय के साथ इंटरव्यू देने जाना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं और सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है। तीसरा, इस निश्चय के साथ इंटरव्यू देने जाना मना इस बात को सामने रखते कि एक सफेद कपड़े पहनकर बड़ा सा बैज लगा के जाना और बताना इसका रिजल्ट क्या रहता है। उन्होंने ऐसा ही किया, इसी निश्चय के साथ इंटरव्यू देने गए कि मैंने जो पढ़ा याद किया वही प्रश्न मेरे से पूछे जाएंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है, और सफेद कपड़े पहन के बड़ा सा बैज लगा कर गया। तो जहां पर पहुंचे तो वहां दो बुजुर्ग से लोग इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हुए थे, तो जैसे ही उनका ध्यान इस भाई की ओर गया तो जो कुछ पूछना था वो बातें तो सब एक तरफ रही, और सबसे पहला ध्यान उनका बैज की तरफ गया। तो बैज के देख कर वो पूछते हैं कि अच्छा आप ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाते हो? तो उसने कहा हाँ जी। तो फिर तो आप मेडिटेशन करना भी जानते होंगे? बोला हाँ जी। तो आप कैसे मेडिटेशन करते हैं, क्या हमें भी सिखाएंगे? बोला हाँ जी। तो उसने बस थोड़ा सा आत्मा परमात्मा का परिचय देकर और कॉमेंट्री से योग कराना शुरू कर दिया। वो कराते गए कॉमेंट्री से योग, और बस उन दोनों की आंखें बंद और मगन प्रभु प्यार में 20 मिनट तक उसने कॉमेंट्री से योग कराया और उन दोनों की आंखें बंद है, कॉमेंट्री पूरी होगी फिर भी उनकी आंखें नहीं खुले। उसके 5 मिनट बाद फिर उसने कहा साहब अभी मेडिटेशन पूरा हो गया है, तो अभी उनकी आंखें नहीं खुले। फिर दोबारा 5 मिनट के बाद जब उसने बोला साहब अभी मेडिटेशन पूरा हो गया है, तो उनकी आंखें खुली। अच्छा आप तो बहुत अच्छा मेडिटेशन कराना जानते हो। दूसरा प्रश्न उससे किया कि इसके अलावा आप और क्या जानते हो? तो वो कहता है कि मैं गीत गाना बहुत अच्छा जानता हूं। तो बोले गीत गाकर सुनाएंगे? बोला हाँ जी। तो उसने गीत गा दिया प्रेम से, बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। वो गीत भी ऐसा ही है, सुनते सुनते फिर दोनों की आंखें बंद और मगन प्रभु प्यार में। 4-5 मिनट का गीत पूरा हो गया, फिर भी उनकी आंखें नहीं खुले। फिर दोबारा 5 मिनट के बाद उसने कहा साहब अभी गीत पूरा हो गया है, तो उनकी आंखें खुली। अच्छा आप तो गीत गाना बहुत अच्छा जानते हो। तो बोला आप इंटरव्यू में पास हो गए हो और ये लो अपॉइंटमेंट लेटर और फलानी डेट से ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। ये है समर्थ संकल्पों की कमाल। इसलिए कभी भी कुछ भी हो जाए लेकिन कभी व्यर्थ के विचार हम अपने अंदर ना लाएं, सदैव समर्थ संकल्पों का स्वरूप बन के चलें तो निश्चित रूप से वैसे बनते चले जाएंगे। और अपनी तपस्या को पावरफुल बनाने के लिए हम अमृत वेले आंख खुलते ही कोई न कोई एक स्वमान इमर्ज कर ले। मैं इस तन में अवतरित हुआ फरिश्ता हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, लाइट हाउस माइट हाउस हूं, ऐसा समान जिसकी स्मृति आते ही नशा चढ़े शक्ति की अनुभूति हो और उसका चिंतन करते स्वरूप बनकर योग करें। तो जहां पर हम किसी भी समान का स्वरूप बन के चलते हैं तो वहां पर हमारे अंदर वो गुण विशेषताएं शक्तियां महानताएं आती चली जाती है और फिर वैसा बनना करना सहज और सरल होता है। सुमान से हमारे विचार महान बनते हैं और जहां विचार महान है तो वहां स्थिति को महान बनाना सहज और तपस्या को महान बनाना सहज और सरल हो जाएगा। सुमान से स्वयं को सम्मान मिलता है, बाबा से भी सम्मान मिलता है, दूसरों से भी सम्मान मिलता है। सुमान से किसी भी नेगेटिव वृत्ति वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव बनाया जा सकता है। सुमान के आधार से वातावरण वायुमंडल को बदला जा सकता है। जो कार्य आपके मुख के बोल से नहीं हो पाता है वो सुमान के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा कराया जा सकता है। इतनी बड़ी शक्ति है बाबा द्वारा दिए हुए सुमानों में। तो सुनिए एक ऐसा ही प्रैक्टिकल का अनुभव। एक भाई थे, उनको उसके कैसे स्वमान के द्वारा आप अपने शारीरिक कर्म भोग को जी सकते हैं। तो एक माता का लड़का था, वो जन्म से ही बहुत वीक माइंड था, हाफ माइंड जैसे होता है ना, कोई प्रॉपर काम नहीं कर पाता है माइंड। तो बहुत डॉक्टरों को दिखाया वो माता ने, लेकिन सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कुछ नहीं हो सकता, ऐसे ही रहेगा जीवन भर तक। तो माता बड़ी परेशान थी। थोड़े दिनों के बाद वो माता ज्ञान में आ गई। क्लास के बाद मिलते हैं तो आपस में पूछते हैं अपनी अपनी, किसी ने को उसने अपनी प्रॉब्लम बताई तो किसी ने उसको राय दी कि माता जी आप मधुबन में सूरज भाई से फोन करके बात करो, वो आपकी समस्या का समाधान बताएंगे। फोन किया, बात बताई सारी, तो भाई साहब ने उनको बताया कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं और सर्वशक्तिवान बाबा से शक्तियां लेकर उस आत्मा को दे रही हूं और ये मेरा योग इस बात के लिए है कि मेरे योग की शक्ति उस बच्चे को जाए और इससे वो बच्चा ठीक हो जाए, ये मेरा योग इस बात के लिए है। ये संकल्प रोजाना जरूर करना योग करते समय, और इस स्वमान का अभ्यास करते रोजाना 1 घंटा 21 दिन तक योग करना। ऐसा भाई जी ने उस माता जी को बताया और उन्होंने योग करना शुरू किया। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं और सर्वशक्तिवान बाबा से शक्तियां लेकर इस बच्चे को दे रही हूं और ये मेरे योग की शक्ति उस बच्चे को जाए, इससे वो बच्चा ठीक हो जाए। इस तरह से अभ्यास करते हुए माता योग करने लगी। जैसे जैसे वो योग करती गई वैसे वैसे उस बच्चे की तबीयत में सुधार होता गया और 21 दिन के बाद वो बच्चा कंप्लीट ठीक हो गया। तो आप सोचिए बाबा द्वारा दिए हुए सुमानों में कितनी बड़ी शक्ति है। दूसरा, कैसे एक सुमान के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा असंभव कार्य संभव किया जा सकता है या दूसरों की मनोवृत्तियों को बदला जा सकता है। एक भाई का फोन आया हमारे पास, कहने लगे एक भाई जी मेरी सामने बड़ा एक समस्या आ गई है, मेरे को बड़ा टेंशन हो गया है। मैंने एक जमीन की प्लाट के लिए सौदा किया था 4 लाख रुपए में, बातचीत हो गई, सौदा फाइनल हो गया और जब बात आई रजिस्ट्री कराने की तो उन्होंने कहा कि पैसे दे दो रजिस्ट्री करा देते हैं। तो उसने पैसे दे दिए और पैसे लेकर वो व्यक्ति बदल गया, आपको हम ये प्लाट नहीं ये प्लाट देंगे। तो बोल नहीं, बात तो उसकी हुई थी, मेरे को तो वही चाहिए, कोई मौके की जगह होगी। तो बोल नहीं वो नहीं मिलेगा, ये प्लाट देंगे। बोल नहीं वो तो मेरे को नहीं चाहिए, अगर आपको नहीं देना तो मेरे पैसे वापस कर दो। बोल कल ले जाना, कल गया 5 दिन बाद ले जाना, 5 दिन बाद गया, 15 दिन बाद, 15 दिन बाद गया, महीना बाद, ऐसे करते करते 2 साल निकाल दिए। उसके पैसे वापस नहीं कर रहा, ना भी नहीं कर रहा है और दे भी नहीं रहा है। तो उसको बड़ा टेंशन हो गया और उसने सारी समस्या बताई, तो मैं क्या करूं। तो हमने उसे बताया कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं और सर्वशक्तिवान बाबा से शक्तियां लेकर उस आत्मा को मैं दे रहा हूं जिसने मेरे पैसे लिए, और मेरे योग की शक्ति उस आत्मा को जाए, इससे उसको सद्बुद्धि मिले, वो मेरे पैसे वापस कर दे, ये मेरा योग इस बात के लिए है। ये संकल्प जरूर करना और रोजाना 1 घंटा 21 दिन तक योग करना, बताना इसका रिजल्ट क्या रहता है। उस भाई ने योग करना शुरू किया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेकर उस आत्मा को दे रहा हूँ और बाबा इस आत्मा को सद्बुद्धि मिले, ये मेरे पैसे वापस कर दे, ये मेरा योग इस बात के लिए है। ऐसे ऐसे वो योग करता गया और 10 दिन योग करने के बाद वो व्यक्ति खुद उसके घर पे आता है और 4 लाख रुपए देकर चला जाता है। तो आप सोचिए बाबा द्वारा दिए हुए सामानों में कितनी बड़ी शक्ति है। हम रोजाना समानों की बातें सुनते हैं तो कई बार वो साधारण सी लगती है, लेकिन किसी भी समान का पूरी तरह से आनंद लेने के लिए, उस स्थिति में स्थित होने के लिए हम थोड़ा सा उस पर मनन चिंतन करके लिख लें आधा एक पेज, और उसके साथ साथ हम उस संबंध में कुछ बाबा की मुरली या कोई और बात पढ़ लें, मेटेरियल बुद्धि में रखें। तीसरी बात, उसका पूरी तरह सारे दिन में अभ्यास करके चले तो आपकी बुद्धि में बहुत सारी बातें स्वमान के बारे में जब होंगी तो वैसी स्थिति बनाना, वैसी अनुभूति करना, उस स्थिति में स्थित होना आपके लिए सहज और सरल हो जाएगा। और इस तरह से अपनी तपस्या को हम निरंतर आगे बनाकर रख सकेंगे। और तपस्या को आगे बढ़ाने के लिए हम अपने मन की भावनाओं को शुभ श्रेष्ठ कल्याणकारी बनाएं, क्योंकि सबसे पहले हमारे मन में किसी बात के लिए संकल्प आता है और यदि उन मन में भावना उठती है फलाना ऐसा है, वो ऐसे क्यों कर रहे हैं, वो ऐसे ही करते हैं, उनके अंदर ये कमी कमजोरी है, तो किसी कमी कमजोरी को देखकर उसके प्रति हम वैसी भावना रख के चलते हैं, ये मेरे को सदा क्यों ऐसा तंगी करते हैं, मेरे सामने सदैव रुकावट डाल के रखते हैं। तो जैसी भावना हम अपने मन में दूसरों के प्रति रख के चल रहे हैं, उनके सूक्ष्म में वाइब्रेशन उन आत्माओं तक पहुंचते हैं और वो आत्मा उन भावनाओं को पाकर वो भी अपने मन में हमारे प्रति वैसी भावना रख के चलती है जैसा कि हम उसके प्रति रख के चल रहे हैं। तो मान लो हमारे मन में उसके प्रति नेगेटिव भावना है, तो वो भी हमारे प्रति नेगेटिव भावना रखेगी और उसकी नेगेटिव भावनाएं हमारी स्थिति को भारी बना देंगे, मन को विचलित करेंगे, योग में एकाग्र नहीं होने देंगे, पुरुषार्थ में विघन रूप बनेंगे। तो कोई कैसा व्यवहार हमारे से करे, लेकिन हमें अपने मन में सदा ही सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रख के चलनी है और वो तभी संभव हो सकेगा जब हम एक तो अपने मन में निरंतर हमारे मन में सर्व के प्रति शुभ भावना रहे, कभी भी नेगेटिव भावनाएं बदले नहीं। तो उसके लिए एक तो चाहे कोई कैसी भी आत्मा हो हमारे प्रति कैसा व्यवहार करे, लेकिन हमारे मन में कंप्लीट शुभ भावना हो, जरा भी नेगेटिव भावना ना हो उस आत्मा के प्रति। और दूसरी बात, हमारी भावनाएं बदले नहीं, उसके लिए चाहिए आत्मा में ज्ञान और योग का बल इमर्ज रूप में होना चाहिए, तो नहीं बदलेंगी। अन्यथा ज्ञान योग का बल बुद्धि में तो है लेकिन इमर्ज रूप में नहीं है, तो गलत व्यवहार को देखकर भावनाएं ज्यादातर लोगों की बदल ही जाती है। तो इन दो बातों को सामने रख के चलें और जहां पर हम निरंतर अपने मन में सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रख के चलते हैं, तो वहां कैसे हमारे मन की शुभ भावनाओं में इतनी बड़ी शक्ति है कि वो कैसी भी नेगेटिव वृत्ति वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव बना देगी। तो सुनिए एक ऐसा ही अनुभव, क्योंकि आप में से कई माताएं ऐसी होंगी जिनके पति ज्ञान में नहीं चलते, विघ्न डालते होंगे, कई भाई ऐसे होंगे जिनकी पत्नी ज्ञान में नहीं चलती, वो रुकावट डालती है, या और कोई संबंध ही आपको ज्ञान में चलने से रोकता है, तो कैसे ऐसी वृत्ति वाली आत्मा को बदलकर आप पॉजिटिव बना सकते हैं, सुनिए प्रैक्टिकल का अनुभव। एक भाई थे, वो ज्ञान में चलते थे, उनकी युगल ज्ञान में नहीं चलती, तो बहुत विघ्न डालती थी, कहती थी कि मेरे बिना पूछे बिल्कुल भी आपको सेंटर नहीं जाना है। लेकिन उनका बिजनेस बड़ा होने के कारण बार बार बाहर आना जाना होता था, तो सेंटर पर भी क्लास करके आ जाते थे, लेकिन ऐसे कब तक, ज्ञान में चलना कोई दो चार दिन की तो बात नहीं है। तो 3 साल पहले की बात है, वो भाई मधुवन आए बाबा से मिलने के लिए, एक रात ऊपर भी पांडवन में रुकने के लिए आए। तो उस दिन हमारा यहाँ एक तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप बना है जिसकी मीटिंग होती रहती है सूरज भाई जी के साथ सप्ताह में 10 दिन में एक बार, तो उस दिन वो मीटिंग चल रही थी। तो उस भाई को पता चला, वो भी मीटिंग में पहुंच गए, मीटिंग पूरे होने के बाद सूरज भाई जी से उन्होंने प्रश्न किया कि मेरी युगल बहुत विघ्न डालती है, मैं क्या करूं। तो भाई साहब ने उनको बताया कि देखो, यदि आप अपनी युगल को परिवर्तन करना चाहते हो तो दो बातों का ध्यान रख के चलना आज से बहुत जरूरी है। एक तो अपने मन में कंप्लीट उस आत्मा के प्रति शुभ भावना रख के चलो आज से ही, चाहे वो कैसा व्यवहार आपसे करे, और दूसरा कि ये प्रयोग अमृत वेले ही करना है, अभी जो मैं बतला रहा हूं। और क्या करना है, क्यों करना है, क्योंकि अमृत वेले क्यों करना है, क्योंकि अमृत वेले हम सभी का अंतर्मन शांत और खाली होता है। तो जिस भी आत्मा को हम शुभ भावनाओं के वाइब्रेशन देंगे वो उस तक पहुंचते हैं और उसका अंतर मन शांत और खाली होने के कारण उन्हें सहजी स्वीकार कर लेगा। और जब कोई बात आपने स्वीकार कर ली तो आप वैसे करेंगे, ये है इसका विधि सिद्धांत तरीका, इसलिए प्रयोग अमृत वेले ही करना है। दूसरा प्रयोग क्या करना है, जिस आत्मा को आप बदलना चाहते हो उसको अपने सामने सूक्ष्म में लाइट के रूप में इमर्ज कर लो और उससे इसी प्रकार से बातें करो कि तुम तो बहुत अच्छी आत्मा हो, देवकुल की आत्मा हो, तुम्हारा कल्याण हो, आगे बढ़ो, सुखी रहो। इस तरह से अमृत वेले योग में 7 दिन उसे इमर्ज कर और बातें करना और बताना इसका रिजल्ट क्या रहता है। और उसने ऐसा किया, अपने घर जाकर अमृत वेले उठकर अपनी युगल को सूक्ष्म में लाइट के रूप में मर्ज कर उससे इसी प्रकार से बातें की कि तुम तो बहुत अच्छी आत्मा हो, देवकुल की आत्मा हो, तुम्हारा कल्याण हो, आगे बढ़ो, सुखी रहो। और वो बात भी उसने बता दी जिसमें वो विरोध करती थी। तो ऐसे उसने 2 दिन प्रयोग किया। तीसरे दिन ड्रामा अनुसार उनके सेंटर पर योग की भट्ठी थी। तो उसने सोचा आज योग की भट्ठी है तो योग की भट्ठी में तो जाना है। तो मैंने दो दिन तो प्रयोग किया सब भावनाओं का, तो कुछ तो उसका असर हुआ ही होगा, तो मैं युगल से पूछ कर देख लेता हूँ, जैसा जवाब मिलेगा उसे पता चल जाएगा कि भाई सब भावनाओं के प्रयोग का असर हुआ या नहीं, कुछ परिवर्तन बदलाव आया या नहीं। तो गया युगल के पास और कहने लगा कि देखो आज हमारे सेंटर पर योग की भट्ठी है और यदि आप कहो तो मैं जाऊं। हाँ हाँ भले जाओ। जो रोजाना इतना विरोध करती थी वो ऐसी छुट्टी दे दी जैसे कि पहले से ही तैयार बैठी है। कैसे आ गया इतना बड़ा परिवर्तन? उसके मन की शुभ भावनाओं ने उसकी मनोवृत्तियों को बदल दिया। इतनी बड़ी शक्ति है हमारे मन की शुभ भावना। एक दूसरा प्रयोग में अपना स्वयं का ही सुना देता हूँ। वही 8 साल पहले की बात है, जब हम नांदेड़ पूना जा रहे थे भट्ठी कराने के लिए, तो हमारे एक साथ वाले भाई ने दिल्ली जाने का प्रोग्राम बना लिया और मेरे को कहता है मेरे को अभी जाना है, मैं गया नहीं हूँ, गाड़ी जा रही है, मैंने देखा नहीं है। मैंने कहा कि भाई आप पहले मेरे को बताते तो मैं अपना प्रोग्राम आगे पीछे कर लेता, अभी एक ही साथ एक ही डिपार्टमेंट से दो भाई मधुबन से बाहर जाए तो यहाँ की सेवाओं में थोड़ा कमी आती है, तो हो सके तो। मैंने कहा आप मेरे आने के बाद जाओ। नहीं नहीं मेरे को अभी जाना है, कुछ भी करो, किसी को भी रखो, यहाँ मेरे को जाना ही है। काफी समझाया लेकिन वो नहीं माना। फिर मैंने ये कहकर छोड़ दिया। अच्छा मैंने कहा ठीक है, आपको जैसे ठीक लगे वैसे करो। और दूसरे दिन अमृत वेले योग में सूक्ष्म में लाइट के रूप में उसे इमर्ज कर अमृत वेले उससे बातें की। देखो मैंने कहा मेरे मन में आपके प्रति बहुत शुभ भावना है कि आप जरूर दिल्ली जाओ, अच्छे तरह घूम के आओ, लेकिन मेरे आने के बाद जाओ, ताकि यहाँ दोनों का काम भी हो जाए और बाबा की सेवा भी ठीक चलती रहे। और दूसरा उसी प्रकार से शुभ भावना के रूप में बातें की, तुम तो बहुत अच्छी आत्मा हो, देवकुल की आत्मा हो, तुम्हारा कल्याण हो, आगे बढ़ो, सुखी रहो। इस तरह से एक दिन सूक्ष्म में इमर्ज कर योग में अमृत के लिए उससे बातें की और उसके बाद दो दिन ऐसे ही छोड़ दिया। तीसरे दिन उसी की बात को लेकर उससे पूछा कि आप दिल्ली तो जा रहे हैं लेकिन आपके वापसी आने की डेट कौन सी है? तो कहता है कि मैंने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। तो जो कार्य मुख के बोल से नहीं हो पाया वो शुभ भावना शुभ कामनाओं के पॉजिटिव पावरफुल वाइब्रेशंस ने कराया। इतनी बड़ी शक्ति। इसलिए हम कभी भी अपने मन में कोई कैसा व्यवहार हमारे से क्यों नहीं करे, लेकिन हम अपने मन में कभी भी किसी के प्रति नेगेटिव भावना ना लाएं, सदैव शुभ भावना शुभ कामना रख के चलेंगे, तो उनमें इतनी बड़ी शक्ति है कि किसी भी आत्मा को नेगेटिव विचारों को बदलकर पॉजिटिव बनाया जा सकता है। और इस तरह से जब हम हमारे को सभी से दूसरों से शुभ भावना युक्त व्यवहार मिलेगा तो फिर हम आपको जैसे करना चाहें वैसी तपस्या को हम अब बना सकेंगे। और तपस्या में आगे बढ़ने के लिए हम बातों को महत्व नहीं, बाबा और उसके ज्ञान को महत्व देकर चले। क्या होता है देखो, अनेक जन्मों का अनेक आत्माओं के साथ हम सभी का हिसाब किताब है। आपका भले कोई दोष नहीं है लेकिन एक आत्मा आकर आगे से ही आपको कुछ बोल देती है, आप जा रहे हैं पीछे से आके किसी ने टक्कर मार दी, होता है ना ऐसे है? तो आप सोचेंगे मैंने तो मेरी तो कोई गलती नहीं, फिर भी ऐसा क्यों हुआ भाई इन्होंने है? हम कई बार बोलते थे ना उन्होंने ऐसा किया तो मैंने ऐसा किया है। तो वास्तव में हम कई बातों का दोष दूसरों को दे देते हैं, लेकिन ज्ञान क्या कहता है? आज जो भी कुछ जिसके भी साथ हो रहा है, अच्छा या बुरा, जैसा व्यवहार या घटनाएं घटित हो रही है, वास्तव में उनका कारण कोई दूसरा नहीं, हम स्वयं हैं। वो वास्तव में मेरे ही कर्मों का परिणाम है, मेरे ही कर्मों का फल है। अब आप उसे दुखी होकर चुकतू करें या सुखी होकर चुकतू, तो मेरे को ही करना है। तो सहज क्या है जी, क्या है तरीका? खुशी खुशी से चुकतू करना, उसे स्वीकार कर चलना। तो जहां हम बातों को महत्व देते हैं, क्यों, क्या, कैसे, इन्होंने क्यों किया ऐसा, ऐसे क्यों कर रही है, बातों को महत्व देना, तो वहां स्थिति हलचल में आएगी। और जहां बार बार उसके ज्ञान को महत्व देते हैं अर्थात उसे यूज कर चलते हैं, तो वहां सब कुछ ठीक हो जाता है। तो सुनिए एक ऐसा ही प्रैक्टिकल का अनुभव, क्योंकि बातें तो आएंगी, अनेक जन्मों का हिसाब किताब है, लेकिन कभी भी कोई बात परिस्थिति आए तो आप क्या कैसे ज्ञान योग के बल से उसमें विजयी बन सकेंगे? अनुभव तो मैं सुना रहा हूं, लेकिन ज्ञान के प्रयोग का कैसे विजय प्रयोग कर विजय बन सकेंगे? किसी ने कुछ मान लो बोल दिया, आपका डिसरिगार्ड कर दिया, तो कैसे इस बात के प्रभाव से मुक्त होंगे आप? कोई बात नहीं, कोई हिसाब किताब होगा, कोई जन्म का, चलो ये भी चुकता हुआ, अच्छा हुआ। और दूसरा, कि सोचने की बात है, उस समय याद करो कि ये बात बड़ी या बाप बड़ा है। एक व्यक्ति के दो शब्द सुनकर हम मन में रख के हलचल में आ गए, और बाबा रोजाना जो चार पेज की मुरली सुनाता है उसे सुनकर कई बार भूल जाते हैं है? तो सोचने की बात है ना कि वो बात बड़ी या बाप बड़ा। ये जानते तो सब है बाप बड़ा, लेकिन हो क्या जाता है उस समय, बात बड़ी हो जाती है। तो अगर ये ज्ञान की पॉइंट हमें याद आ जाए कि बात बड़ी या बाप बड़ा, तो एक सेकंड में हम उस बात के उस परिस्थिति के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए ज्ञान को बुद्धि में रख के चलना, इमर्ज रूप में रखना बहुत बहुत जरूरी है अनेक समस्याओं के समाधान के लिए। और जहां विस्मृत है, हम बातों को महत्व देते हैं, तो वहां कैसे स्थिति हलचल में आ जाती है। सुनिए अब एक प्रैक्टिकल का अनुभव। एक भाई, एक युगल थे, ज्ञान में चलते थे, एक उनका बच्चा था और पति पत्नी थे, तीन ही थे उस परिवार में। तीनों ही बहुत ही अच्छे ज्ञानी योगी पुरुषार्थी आत्मा, घर का वातावरण भी बहुत अच्छा था। तो चलते चलते वो माता के मन में एक संकल्प उठने लगा कि हम बूढ़े हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, बुढ़ापे में हमारी सेवा कौन करेगा, घर को कौन संभालेगा, तो घर में बहू होनी चाहिए। तो लड़का बड़ा था तो लड़के को बोला, बेटा आप शादी करो। लड़के ने मने कर दिया, क्योंकि तीनों ही ज्ञान में चलते थे। मने कर दिया तो माताजी बोलने लगती है, यदि आप शादी नहीं करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। यही बात माताजी ने एक बार बोली, दो बार बोली। जब तीसरी बार बोली तो माताजी लड़के के मन में संकल्प चलने लगा, भाई मेरे कारण माताजी आत्महत्या करे तो ये तो ठीक नहीं। चलो माताजी ने इतनी पालना दिया, बड़ा किया, योग्य बनाया, तो माताजी की बात मान लेते। तो लड़के ने शादी कर ली। शादी कर ली तो जो घर में बहू आई वो बहुत ही तेज और तराट, बस उसी दिन से सास बहू का लड़ाई झगड़ा शुरू, रोजाना का लड़ाई झगड़ा होने लगा। माताजी बड़ी परेशान। लड़के को बोला, बेटा आप इसको समझाओ। लड़का कहता है, माताजी मेरे को तो बहू की जरूरत थी ही नहीं, बहू तो आपको चाहिए थी, अभी आप उसका सुख लो है, जैसी भी उसे स्वीकार करो, क्योंकि उसने जबरदस्ती कह के शादी कराई। तो माताजी बड़ी परेशान, तो क्या करे। क्लास के बाद मिलते हैं तो किसी से पूछा, भाई ऐसे से मेरे सामने बड़ी समस्या आ गई है, मैं क्या करूं। तो उन्होंने भी यही सलाह दी कि माताजी आप मधुबन में सूरज भाई से फोन करके बात करो। तो फोन किया, सारी बात की समस्या बताई। तो भाई साहब ने उनको सलाह दी कि देखो माताजी, आज वो माताजी की बात नहीं लेकिन हम सबके साथ ये बात लागू होती है कि जो भी हम सबके साथ अच्छा या बुरा व्यवहार हो रहा है उसका कारण कोई दूसरा नहीं, हम स्वयं है। तो जरूर किसी न किसी जन्म में आपने उस आत्मा को तंग किया होगा, जो आत्मा आपके घर में बहू बनकर आई है, तो जरूर किसी न किसी जन्म में आपने उस आत्मा को तंग किया होगा, तो वो बदला लेने के लिए आपके पास आई है, क्योंकि बिना कारण के तो कुछ होता नहीं है ना। तो अभी क्या करो, देखो दो हिसाब किताब तरीके चुकतू करने के तो आपने सुने होंगे अब तक। सुंदर तरीका तो है सबसे सुंदर योग, और दूसरा है कर्म भोग। लेकिन एक तीसरा भी तरीका है जो हमने खुद भी प्रयोग किया और कईयों से प्रयोग करवाया है, उससे भी हिसाब किताब चुकतू होते हैं। वो तरीका है कि जो भी आत्मा आपको तंग कर रही हो, दुख दे रही हो, उस आत्मा को सूक्ष्म में मर्ज कर अमृत पीले योग में, और मन ही मन उससे माफी मांग लो। भाई मेरे द्वारा किसी भी जन्म में आपको दुख मिला हो, कष्ट हुआ हो, तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कर देना, माफ कर देना, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। इस तरह से सात दिन अमृत पीले योग में उसे सूक्ष्म में मर्ज कर माफी मांग लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उस माताजी ने ऐसे किया, अपनी बहू को सूक्ष्म में मर्ज कर अमृत पे ले हम, और उससे मन ही मन माफी मांगी, भाई मेरे द्वारा किसी भी जन्म में आपको दुख मिला हो, कष्ट हुआ हो, तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कर देना। ऐसे सात दिन योग में माफी मांगी, और उसके बाद आठवें या नौवें दिन माताजी की बहू खुद माताजी के पास आती है और कहती है कि माताजी मैंने आज तक आपको बहुत तंग किया, दुख दिया, लेकिन आज के बाद मैं आपको तंग नहीं करूंगी, हम दोनों मिलकर रहेंगे और सब कुछ ठीक हो गया। ये प्रैक्टिकल का अनुभव। तो जिनके भी सामने कोई ऐसी परिस्थिति हो तो ये भी प्रयोग करके देख सकते हैं। तो जहां हम बातों को महत्व देते हैं तो कैसे वहां स्थिति हलचल में आती है, और जहां बाबा और उसके ज्ञान को महत्व देकर चलते हैं तो वहां कैसे सब कुछ ठीक हो जाता है। तो कुछ भी हो जाए लेकिन हम बाबा और उसके ज्ञान को महत्व देकर चलें, उसका स्वरूप बन के चलें, उसका प्रयोग कर चलें, तो निश्चित रूप से निरंतर हम आगे बढ़ते अपनी तपस्या को पावरफुल बना सकेंगे। तो इस प्रकार से जो भी कुछ आपने अनुभव सुने, सुनकर कईयों के सामने भी छोटी मोटी कोई समस्या परिस्थिति होगी तो कईयों के मन में संकल्प आता है हम अवश्य प्रयोग करें, हम भी करके देखें, समस्या विजयी बने, जरूर करो। लेकिन योग के प्रयोगों में सफलता पाने के लिए 5 बातों का होना बहुत जरूरी है। उन 5 बातों को सामने रखकर योग का प्रयोग करेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, नहीं तो कभी सफलता असफलता दोनों हो सकती हैं। उसमें पहली बात है कि योग के प्रयोगों में सफलता पाने के लिए हमारा अमृत वेले से रात्रि तक एक दिन का योग का चार्ट, चलते फिरते, कर्म करते, बैठ के, टोटल मिलाकर कम से कम 5 घंटे का अवश्य होना चाहिए। दूसरी बात, निश्चित स्थान और निश्चित समय का होना बहुत जरूरी है। एक ही स्थान पर बैठकर एक ही समय रोजाना प्रयोग करें, एक ही समय और एक ही स्थान। तीसरी बात, जैसी परिस्थिति, जैसी समस्या, वैसे ही स्वमान में स्थित होकर हम योग का प्रयोग करें। कहीं मान लो शांति की जरूरत है तो मैं शांति का अवतार या पीस हाउस आत्मा हूं, कहीं शक्ति की आवश्यकता तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, कहीं कोई इम्प्योरिटी के संबंधित समस्या है तो मैं पवित्रता का अवतार हूं। माना जैसी परिस्थिति वैसे स्वमान में स्थित होकर योग का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। चौथी बात, योग के प्रयोग में सफलता पाने के लिए हमारे मन की निस्वार्थ भावना, शुभ भावना, कल्याणकारी भावनाओं का होना बहुत जरूरी है। और 5वीं बात, पावरफुल स्थिति का होना जरूरी है। तो इन 5 बातों को सामने रखकर हम योग का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। पावरफुल स्थिति 5वीं बात। और लास्ट पॉइंट, तपस्या में आगे बढ़ने के लिए हम कहीं भी जाएं आएं, कुछ भी करें, लेकिन निरंतर बाबा को साथी बनाकर चलें। एक तो अपने श्रेष्ठ स्वमान में रहें, जो मैंने पहले बात बताई, और दूसरा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है। बाबा को दिल से याद कर कहो, बाबा मैं फलानी सेवा पर जा रहा हूं, आप भी मेरे साथ चलो और ये कार्य कराओ। तो आप अनुभव करेंगे कि जैसे कोई व्यक्ति किसी का साथी बनकर साथ निभाता है, ऐसे बाबा हमारा साथी बनकर साथ निभाता है। और जहां सर्वशक्तिवान भगवान हमारा साथी बन के साथ दे रहा हो तो वहां अनेक असंभव कार्य संभव होते चले जाएंगे और सब कुछ सहज और सरल होता चला जाएगा। बाबा ने खुद कहा है, बच्चे मेरी सर्वशक्तियां तुम्हारे लिए हैं, इन्हें तुम यूज करो, लाभ लो, फायदा उठाओ। और बाबा के महावाक्य हैं, बच्चे कोई विघ्न परिस्थिति क्यों नहीं तुम्हारे सामने आए, यदि तुम दिल से बाबा को याद कर कहेंगे कि प्यारे बाबा मीठे साथी आ जाओ, भी मदद करो, तो बाबा तुरंत तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हो जाएगा। जब इतनी बड़ी ऑफर भगवान हमें दे रहा है तो क्यों नहीं हम उसको यूज करें, उसका लाभ लें, फायदा उठाएं। तो सुनिए कुछ ऐसे ही प्रैक्टिकल के अनुभव कि जहां सर्वशक्तिवान को हम साथी बना के चलते हैं तो कैसे एक असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। मेरा स्वयं का ही अनुभव है। ये बात है आज से करीब 30 साल पहले की। मुझे ज्ञान में चलते 1 साल ही हुआ था लगभग उस समय, नहीं सॉरी 31 साल पहले की। तो मुझे ज्ञान में समर्पित होके हुए हैं 31 साल, तो मधुबन निवासी बने 1 ही साल हुआ था। तो उस समय हमारे को कोई क्लास कराने का, बोलने का अभ्यास नहीं था उस समय। तो सभी दादियां यहां रहती थी, शांतिवन ज्ञान सरोवर कुछ नहीं बना था उस समय की ये बात है। तो मनोहर दादी जी ने एक प्रोग्राम बनाया, जिन भाई बहनों पर क्लास कराना, भाषण करना नहीं आता है, उनके अंदर वो कला आए। तो मेरे को भी कहा आपको भाषण करना है। हमने चुपचाप सुन लिया, ना हाँ किया ना किया, और क्योंकि कभी क्लास कराया ही नहीं, भाषण किया ही नहीं लोगों के आगे, तो कैसे करेंगे भाई है? और प्रोग्राम ऐसा था कि टॉपिक किसी को बताए नहीं जाएंगे, ज्ञान योग के टॉपिक होंगे, चिट्ठी बनाकर रख दी जाएंगी, उसी समय आओ, चिट्ठी उठाओ और जो टॉपिक निकले उस पर बोलो, ऐसा वो प्रोग्राम था। उसका नाम रखा काल्पनिक भाषण प्रतियोगिता, अर्थात आप जो है वो नहीं दूसरे बनकर बोलिए, कल्पना करके बोलिए। अभी प्रोग्राम ऐसा तो तैयारी भी करे तो क्या करे, टॉपिक का ही मालूम नहीं है। तो मैंने चुपचाप सुन लिया, ना हाँ किया ना किया, मैं बाबा के कमरे में गया और मैंने बाबा को कहा, बाबा मेरे को तो भाषण करना आता नहीं, मैं कैसे भाषण करूंगा। तो बाबा की तरफ से टचिंग मिली, बच्चे बाबा ने तुमको वरदान दिया है, तुम ही कल्प कल्प के विजयी रतन हो। तो ये स्मृति में आते ही थोड़ा शक्ति आ गई। मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है, तो इसका मतलब हमने कल पहले भाषण किया यार विजयी बने हैं, तो फिर से करना वही बात तो कौन सी बड़ी बात है। तो थोड़ा शक्ति आ गई। और ये भी कहा कि यदि कुछ नहीं भी आएगा तो हम बाबा को याद कर कहेंगे बाबा आओ, आप ही आओ और आप ही भाषण कराओ। ऐसा है, थोड़ा संकल्प करके और तैयार हो गई। तो एक नया मनोरंजन इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था, सब लोग देखने सुनने के लिए आए। रात के 8:30 बजे ओम शांति भवन का हाल फुल भर गया है। सब दादे दादियां आगे बैठे हैं, जिनको कुछ बोलना नहीं आता वो ऐसे लोगों को स्टेज पर बिठा दिया गया है। 7 बहनें 7 भाई सब नए नई, और ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया गया जिनको बोलना नहीं आता था, क्योंकि उनको सिखाना है, क्लास कराना, भाषण करना। तो 7 बहनें 7 भाई। तो प्रोग्राम शुरू हुआ, तो आप सोच सकते हैं कैसा वंडरफुल सीन होगा वो है। तो प्रोग्राम शुरू हुआ, 3 लोगों ने हमारे से पहले बोला, 4th नंबर हमारा आया। हम भी गए, चिटकी उठाई और खोल के देखा तो इतना वंडरफुल टॉपिक निकला, कभी सोच भी नहीं सकते थे। टॉपिक निकला कि यदि आपको ब्रह्मा कुमारी बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे। अब एक तरफ तो पढ़ के हंसी आए, दूसरी तरफ विचार चले इस पर हम क्या बोले, तो बिल्कुल ही अपने से बाहर का टॉपिक है। अच्छा, सोचने का भी टाइम नहीं, माइक क्या के खड़े हैं, बोलना ही अपने को है। तो मेरी बुद्धि में कुछ नहीं आया, मैंने बाबा को याद कर कहा कि बाबा अभी मेरे को तो कुछ नहीं आता, अभी आप ही आओ और आप ही भाषण कराओ। और ऐसा नहीं हो कि लोग हंसी उड़ाएं, पहली बार स्टेज पाए, भाषण अच्छा होना चाहिए। ऐसे बाबा को दिल से याद कर कहके और जैसे ओम शांति कहके बोलना शुरू किया, तो सचमुच ऐसा लगने लगा कि बाबा जैसे कि ऊपर से बुद्धि में पॉइंट टच कर रहा हो और पॉइंट स्मृति में आती गई। हम बोलते गए और हर पॉइंट के पीछे लोगों की इतनी ताली बजी और इतना अच्छा बोल गए कि उसमें 1st नंबर आया। तो आप सोच सकते हैं कि जिनको 2 शब्द बोलना नहीं आता और इतना अच्छा भाषण कर जाए, 1st नंबर आ जाए, किसकी कमाल है, कौन कराने वाला है। तो उस दिन से एक निश्चय हो गया कि भले हमारे को कुछ भी नहीं आता हो, यदि हम बाबा को साथी बना के चलते हैं तो हमारे लिए हर असंभव कार्य संभव होता चला जाएगा। और उस दिन के बाद हमारा क्लास कराने का, भाषण करने का प्रोग्राम शुरू हो गया। तो बाबा ने एक कला भर दी। और ऐसा ही एक विशेष अनुभव कि जहां सर्वशक्तिवान को हम साथी बनाकर चलते हैं तो कैसे एक असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। तो एक माता थी, बाबा के ज्ञान में चलती थी, तो उसको किसी ने कुछ करा दिया था तंत्र मंत्र का, जिसके कारण उसकी दोनों किडनियों में अचानक जबरदस्त दर्द शुरू हो गया। घर में अकेली, तो अब इतना जबरदस्त दर्द कि उसकी सहन शक्ति से बाहर, तो क्या करे। तो सोचा किसी को फोन करके मदद के लिए बुलाऊं, तो फोन की तरफ हाथ किया तो हाथ भी काम नहीं कर रहा, तो अभी क्या करे। तो सोचते सोचते उसको वो बात याद आई जो बाबा ने कहा कि बच्चे कोई विघन परिस्थिति आए तो दिल से बाबा को याद कर कहो, प्यारे बाबा मीठे साथी आ जाओ मदद करो। तो ऐसे ही उसने दिल से याद कर बाबा को कहा, प्यारे बाबा मीठे साथी आ जाओ भी मदद करो। ऐसे कहते ही 5 मिनट के अंदर कंप्लीट दर्द खत्म। जो दवाई गोलियों से, किडनी का दर्द साधारण चीज नहीं होती है, वो कैसी भी दवाई गोली ले लो वो इतना जल्दी कम नहीं होता है, बहुत धीरे धीरे जाकर कम होता है। लेकिन 5 मिनट में दर्द खत्म हो जाए तो ये सब क्या है ना बाबा की कमाल। ऐसे ही दो, एक और दूसरा अनुभव, दो भाई जा रहे थे कहीं छाता लेकर, बरसात हो रही थी, तो एक उनमें से ज्ञान में चलता था, एक नहीं चलता था, और उनके ऊपर अचानक बिजली गिरी, तो जो ज्ञान में नहीं चलता था वो भाई तो वहीं खत्म हो गया, और जो ज्ञान में चलता था उसके पैरों से धीरे धीरे बिजली ऊपर चढ़ने लगी, तो वो भी डर गया अभी मैं क्या करूं। तो उसने सोचा कि उसको वो ही बात याद आई, उसने दिल से बाबा को याद कर कहा, प्यारे बाबा मीठे साथी आ जाओ वही मदद करो। और इतना कहते कमर तक बिजली ऊपर चढ़ी है उसके, वापस धीरे धीरे बिजली वापस रिटर्न होती चली गई, उतर गई और वो भाई बच गया। है ना बाबा की कमाल। इस तरह से कहीं भी कोई कैसी विघन परिस्थिति क्यों न आए, लेकिन यदि हम दिल से बाबा को याद कर कहेंगे और बाबा को साथी बनाकर चलेंगे तो वह अनेक असंभव कार्य संभव होते चले जाएंगे। और इस प्रकार निरंतर आप तपस्या में आगे बढ़ते उड़ते उड़ाते रहेंगे और बाप समान बन जाएंगे। तो ऐसी हमारी आप सभी महान आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभकामना है। ओम शांति। अभी 5-7 मिनट हैं 12 बजने में। एक छोटी सी बात, और वो क्लास को पूरा करने के बाद में सुना रहा हूं और क्लास से कनेक्टेड भी है, वो भी हम सबकी तपस्या में, कईयों की, सबकी तो मैं नहीं कहता लेकिन कईयों की तपस्या में एक छोटा सा विघन रूप बनती है। कहीं कहीं देखने को मिलता है। यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि क्लास, कईयों को क्लास करते करते या मुरली सुनते सुनते या योग करते करते नींद आ जाती है ना। ये भी बात विघन है, चाहता कोई नहीं क्लास में योग में नींद आए, लेकिन नींद आ जाती है। तो उससे मुक्त होने के लिए कुछ एक बातें हैं, मुख्य पांच बातें हैं। उसके पहले एक दो तीन बातें ये हैं कि एक तो दिन में एक डेढ़ घंटा रेस्ट कर लें, रात को टाइम पर सोएं, हल्का भोजन हो, देरी से भोजन ना करें। ये सब कुछ करने के बाद भी नींद अधिक आए तो फिर आप, एक कारण उसका ये है कि जिनका ब्लड प्रेशर धीमी गति का है, लो ब्लड प्रेशर है, उसके कारण भी ज्यादा नींद आती है, तो उसका इलाज कराएं। ये सब कुछ करने के बाद भी नींद अधिक आए तो फिर आप इन पांच बातों का प्रयोग करके देखना। पहली बात, जब हम पांच छह घंटे नींद करके उठते हैं तो हमारी आंखें पांच छह घंटे बंद रहती हैं। योग में हम ऐसे खोल के बैठना चाहते हैं, आंखों को आदत पड़ी है बंद रहने की, तो खुलती तो है, ऐसे योग करते 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 कब झुटका आ जाता है, फिर पता ही नहीं चलता योग कर रहे हैं या नींद कर रहे हैं। कोई पीछे वाला हाथ लगाएगा, हाँ नहीं नहीं मैं यहीं थे, योग कर रहे थे हम, भाई क्या अनुभव किया, तो कहते बहुत शांति मिली है, क्योंकि नींद से भी आत्मा शरीर दोनों को रेस्ट मिलता है तो शांति मिलेगी है? तो क्या करो, सुबह जब हम उठते हैं हाथ मुंह धुलाई करते हैं तो मुंह में पानी भर लो और इस तरह से करो, ऐसे 8-10 बार कर लीजिए। इससे क्या होगा, हमारी पलकों की नसों का कनेक्शन मुंह के साथ है, जब मुंह की हम ऐसे पानी भर के एक्सरसाइज करेंगे तो उससे पलकों की नसों की भी एक्सरसाइज होगी, और जो नसें यहाँ आकर सुखड़ गई हैं, वो एक्सरसाइज से धीरे 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 खुलकर अपनी ओरिजिनल जगह पर आ जाएंगी। तो जैसे आमतौर पर आंखें खुली रहती हैं वैसे खुली रहेंगी, तो जल्दी से आंखें बंद नहीं होंगी, एक बात। दूसरी बात, जब हम 5-6 घंटे नींद करके उठते हैं तो हमारा ब्रेन, मस्तिष्क सुस्ती आलस के प्रभाव में ज्यादा होता है, क्योंकि 5-6 घंटे नींद की है। तो भले आप हाथ मुंह धुलाई कर लेते हैं, ब्रश कर लेते हैं, कोई चाय पानी पी लेते हैं, तो उससे काफी सुस्ती कम तो होती है, लेकिन ज्यादा फिर भी माइंड पर सुस्ती का प्रभाव रहता है, नींद का प्रभाव रहता है, क्योंकि 5-6 घंटे नींद की है। तो क्या करो, जैसे आपने देखा होगा कि ये एक्यूप्रेशर के डॉक्टर पॉइंट दबा के अनेक रोगों का इलाज करते हैं ना, तो जैसे हमारे हाथों और पैरों में शरीर के सभी अंगों के एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं, वैसे कान के अंदर भी शरीर के सभी अंगों के एक्यूप्रेशर पॉइंट है, और विशेषकर नीचे के भाग में जहां माताएं कुछ पहनती हैं, ये नींद का पॉइंट है, नींद भगाने का, चुस्ती लाने का, अलर्टनेस लाने का ये पॉइंट है। तो योग में जाने से पहले ये पॉइंट आप अच्छी तरह दबा लें, और इसके साथ साथ दूसरे भी सारे पॉइंट दबा लो, इसमें कुछ खर्चे और मेहनत की तो जरूरत नहीं है। तो ये ब्रेन के नजदीक है ना पॉइंट, तो तुरंत ये पॉइंट दबाते ही ब्रेन पर उसका इफेक्ट होगा, प्रभाव आएगा, और जो ब्रेन हमारा सुस्ती आलस के प्रभाव में एकदम उसमें चुस्ती आ जाएगी, अलर्टनेस आ जाएगी, स्फूर्ति आ जाएगी, और फिर कोई अच्छे समान का अभ्यास करते योग करेंगे तो आपका योग बहुत पावरफुल होगा। तीसरी बात, माइंड को और एक्टिव अलर्ट बनाने के लिए, सुस्ती से मुक्त होने के लिए, हमारे ब्रेन की सभी नसें गर्दन के द्वारा शरीर से जुड़ी हुई हैं। तो योग में जाने से पहले थोड़ा इस तरह से गर्दन के एक्सरसाइज कर लो, 5-6 बार यूं और 5-6 बार यूं, लेकिन करना धीरे धीरे, कहीं झटके से गर्दन घुमा दी, कोई नस वगैरह खिंचगी तो कहेंगे भाई जी ने ऐसा कहा तो ऐसा हुआ, ऐसे नहीं हुआ, आराम आराम से करें। तो इससे क्या होगा, जब हम गर्दन की नसों की एक्सरसाइज करेंगे तो उससे माइंड की नसों की भी एक्सरसाइज होगी, और जो नसें नींद के कारण शांत सुन्न पड़ गई हैं उनमें एक्टिवनेस अलर्टनेस आ जाएगी, चुस्ती आ जाएगी, सुस्ती खत्म हो जाएगी, फिर कोई अच्छे सुमान का अभ्यास करते योग करेंगे तो आपका योग बहुत पावरफुल होगा। चौथी बात, माइंड को और एक्टिव अलर्ट बनाने के लिए इस तरह से थोड़ा कान की एक्सरसाइज कर ली जाए, 3-4 बार यों, 3-4 बार यों और 3-4 बारियों, तो इससे भी चुस्ती आ जाएगी, सुस्ती खत्म हो जाएगी। पांचवी बात, जिनको यह पता है कि मुझे योग में नींद आती है, सुस्ती आती है, तो वो अपने साथ रुमाल जरूर रख के बैठे, हैंडकरचीफ, रुमाल जरूर रख के बैठे। और देखो, योग में या कोई अचानक नींद तो आ नहीं जाती है, नींद आने से पहले क्या होता है, थोड़ा सा ऐसे नशा सा चढ़ेगा आपको, है जब आपको लगे कभी नींद का नशा चढ़ने लगा है, तो उठाया रुमाल, हल्के हाथ से एक आंख पर घुमा लिया, दूसरी आंख पर घुमा लिया, पूरे चेहरे पर घुमा लिया, आधा मिनट के अंदर फ्रेश सुस्ती खत्म। इस तरह से आप इन पांच बातों का प्रयोग करके देखो तो निद्रा देवी आपसे कोसों दूर भाग जाएगी, और आप अपना कान इस तरह रोजाना पकड़ते रहेंगे तो माया आपका कान कभी नहीं पकड़ेगी। ओम शांति। चलिए अभी रिकॉर्ड भी बजने वाला है, हम सब योग करेंगे। किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं जब तक रिकॉर्ड बजे। वो डॉक्टरों के पास बहुत इलाज है, दवाई है। डॉक्टरों के पास नहीं है तो देखो, सबसे पहले अपने मन का, विचारों का इलाज है कि मन से एक तो आप ये बात निकालें कि मेरे को लो, भले आपको लो ब्लड प्रेशर है, फिर भी मन से बात निकाल दें कि मेरे को लो ब्लड प्रेशर नहीं है, और अमृत वेले उठकर बाबा को दिल से याद करके हैं कि बाबा मुझे इस बात से मुक्त होना है, आपने इस ब्लड प्रेशर को ठीक करना है। तो ऐसे अमृत वेले पावरफुल संकल्प बाबा को याद कर कहेंगे तो बाबा ने तो कहा कि जैसा तुम सोचोगे वैसा बनते जाओगे। ठीक है, और किसी कोई क्वेश्चन बोलो। तो उसको चेंज किया जा सकता है ना। हाँ, तो वो फिर ये देखो जो पांच बातें मैंने बताई, इनमें से एक जरूर कोई कमी होगी, वो पहले उन बातों को लाओ अपने अंदर, फिर प्रयोग करो तो निश्चित रूप सफलता मिलेगी। इसलिए मैंने तो सिर्फ ज्ञान नहीं लेकिन प्रैक्टिकल के अनुभव सुनाए, क्योंकि उनमें कोई, अगर हम प्रयोग तो कर रहे हैं लेकिन स्थिति हमारी कमजोर है, चार्ट हमारा उतना नहीं है, या निश्चित स्थान निश्चित समय नहीं है, या वैसे समान का अभ्यास कर प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो फिर कोई कमी हो तो उसको चेक कर चेंज करिए। और ज्यादातर परिस्थिति समस्याओं में कारण बनता है योग की कमी का होना। एक छोटा सा अनुभव और मुझे याद आया, एक माता मेरे पास आई, भाई जी मेरी ये समस्या वो समस्या वो समस्या, मैं क्या करूं। तो मेरे को कहीं बाहर जाना था, मैंने कहा माता जी मैं आज बाहर जा रहा हूं 5 दिन के लिए, तब तक आप 2 घंटा बैठ के 2 घंटा कर्म करते, एक दिन में रोजाना 4 घंटा योग करो 5 दिन तक, उसके बाद आप मेरे से मिलना। मैं बाहर चला गया, माता जी योग करती रही। 5 दिन के बाद जब वापस आए तो माता जी से पूछा, माता जी मिलने के लिए आई, माता जी कैसे हैं? तो माता जी कहते भाई साहब मेरी तो कोई समस्या ही नहीं है। तो समस्याएं कहां हैं, क्यों हैं? जहां हमारा योग कम है या योग नहीं है बाबा से, तो हम अपने योग के चार्ट को बढ़ाएं तो सब समस्याएं स्वतः ही समाप्त होती चली जाएंगी। ठीक है, चलो वो भी ठीक हो जाए। देखो बाबा की तो बड़ी कमाल है, देखो तो अभी प्रयोग करो, नींद से मुक्त बन जाएंगे, तपस्या पावरफुल होगी। ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं, ये तो थोड़े ही सुनाए, फिर कभी टाइम मिलेगा सुनेंगे।